नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
नमस्कार आदाब श्रोताओं, मैं अंजलि आज आपके साथ बात करने वाली हूँ भूखमरी दूर करने में मनमोहन सरकार से पीछे मोदी सरकार। भूखमरी दूर करने की भारत की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। साल 2018 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया और इस बार भारत की रैंकिंग और गिर गई। भारत को 119 देशों की सूची में 103वां स्थान मिला है। पिछले साल भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100वें स्थान पर था। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनने के बाद से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। साल 2014 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जहां 55वें पायदान पर था, वहीं 2015 में 80वें, 2016 में 97वें और पिछले साल 100वें पायदान पर आ गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के तमाम देशों में खान पान की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा होता है। गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके लिए भारत की तारीफों के पुल भी बांधे। लाखों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए उन्होंने सरकार की पीठ थपथपाई, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने तमाम दावों और आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आज मैं बात करने वाला हूं आर्थिक मानकों पर देश के 10 करोड़ किसान बहुत ही असुरक्षित हैं। जी हां, दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत का असली चेहरा तब सामने आता है जब किसानों की दुर्दशा व्यक्त होती है। नबार्ड के एक रिपोर्ट में किसानों की आय में गंभीर असमानता दिखाई गई है। देश में किसानों की सबसे कम मासिक आय मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, जबकि तुलनात्मक रूप से किसानों की ऊंची औसत मासिक आय पंजाब और हरियाणा में दर्ज की गई है। सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। वर्ष 2012-13 के अध्ययन के मुताबिक 6,426 रुपए की मासिक आय में से 3,844 रुपए फसल और पशुधन से अर्जित हो रहे थे किसानों को। 5 साल बाद यह योगदान 43% पर आ गया। वर्ष 2016-17 में किसानों की 8,931 रुपए में से आय केवल 3,851 रुपए की आय फसल और पशुधन से हुई है। शेष 57% हिस्सा अन्य स्रोतों से हासिल हुआ है। वास्तव में कृषि आय में केवल 7 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। भारत सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों में किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कई बातें कही हैं। उनमें से एक है लोगों को खेती से निकालकर गैर कृषि काम में लगाना, जो वास्तव में देखा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक आज के समय में किसानों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। किसान परिवार हर दृष्टि से असुरक्षित है। अब यह देखना है कि सरकार के वायदे किस हद तक किसान परिवारों के लिए लाभदायक साबित होंगे।
धन्यवाद राजीव जी, और मैं मधु आज खबर लेकर आई हूँ। UAPA के तहत 67% मामलों में आरोपी हुए बरी। 2016 में यानी UAPA के तहत 33 में से कम 22 मामलों में आरोपी निर्दोष साबित हुए। 2016 तक कम से कम 75% मामलों में आरोपी निर्दोष साबित हुए और मामला खत्म हुआ। 28 अगस्त 2018 को 5 कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, गौरव नवलाखा, वरवरा राव, अरुण फेरेरा और वेरनान गोंसाल्विस को देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था। उन पर पुणे के भीम कोरेगांव दंगों में कथित तौर पर हिंसा को उकसाने का आरोप लगा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GN साईं बाबा को मई 2014 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया संगठन के लिए शहरी संपर्क मानते हुए UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। साईं बाबा के मामले में आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हेम मिश्रा के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक घटना के साथ केवल सहयोग पर्याप्त नहीं है, इसके बावजूद उन्हें दोषी ठहराया गया।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं।
अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5।
तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।